آپ ایس بی ایس اردو کے ساتھ ہیں۔ اس طرح کی اور کہانیاں sbs.com.au/اردو پر سنیے۔
ہم کہاں کے دانہ تھے، کس ہنر میں یکتا تھے، بے سبب ہوا غالب دشمن آسماں اپنا۔ مرزا اسد اللہ خان غالب اردو زبان کے قادر الکلام شاعر ہیں۔ 15 فروری غالب کی برسی منائی جاتی ہے، اسی سلسلے میں ہم نے آج کی پوڈ کاسٹ مرزا اسد اللہ خان غالب پر بنائی ہے۔ غالب ہر دور کے شاعر تھے، اور آج 150 برس گزرنے کے باوجود وہ کتنے بڑے شاعر ہیں، اس بارے میں ہم نے بات کی ہے غالب انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر رضا حیدر سے۔ سنتے ہیں وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔
آج غالب کی وفات کو 150 سال کا طویل عرصہ گزر گیا۔ 150 سال کا عرصہ کوئی معمولی عرصہ نہیں ہوتا، بڑا طویل عرصہ ہوتا، لیکن 150 سال گزر جانے کے بعد بھی ایسا لگتا ہے کہ غالب کی مقبولیت میں روزانہ اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غالب کے اشعار کو جب ہم پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ غالب ہماری زندگی سے بہت قریب ہے۔ اور یہ بات صرف پڑھے لکھے طبقوں تک محدود نہیں رہ گئی، بلکہ ایک عام آدمی بھی غالب کو سمجھنے کی اور غالب کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غالب آج صرف پڑھے لکھے طبقوں تک نہیں رہ گئے، بلکہ غالب ایک عوامی شاعر کی حیثیت سے بھی پوری دنیا میں جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ کون سا ایسا موقع ہے کہ جب لوگ غالب کو کوٹ نہیں کرتے ہیں، غالب کو یاد نہیں کرتے ہیں؟ ہندوستان میں اگر آپ دیکھیں تو ہندوستان کی پارلیمنٹ میں پچھلے 75-80 سالوں میں سب سے زیادہ اگر کسی شاعر کو کوٹ کیا گیا ہے تو وہ مرزا غالب ہیں۔ تو اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو سیاسی حضرات ہیں وہ بھی مشکل حالات میں غالب کو کوٹ کرتے ہیں، غالب کے اشعار کو پیش کرتے ہیں۔ اور صرف سیاستدان تک بات نہیں رہتی ہے، بلکہ ہم دیکھیں گے کہ ہم جب عوامی زندگی کو دیکھتے ہیں تو عوام بھی غالب کو سمجھنا، پڑھنا اور غالب کو کے اشعار کا مطالعہ کرنا ایسا لگتا ہے کہ اس کی زندگی میں ایک فیشن سا بن گیا ہے۔ تو جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے غالب کو لوگ سمجھ رہے ہیں، غالب کو پڑھ رہے ہیں، غالب کے مطالعے میں وسعت بڑھ رہی ہے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اتنی کتابیں آ رہی ہیں ادب کے تعلق سے کہ جس کی کوئی گنتی نہیں ہے، لیکن ان کتابوں میں اکثر و بیشتر کتابیں وہ بھی ہیں کہ جو غالب کے اشعار کے تعلق سے ہیں، غالب کے دیوان کے تعلق سے ہیں۔ تو جیسے جیسے وقت گزرے گا غالب کو سمجھنے اور پڑھنے والوں کی تعداد بڑھتی رہے گی، اور صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ ہم ہندوستان سے جب باہر بھی دیکھتے ہیں تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ باہر کی دنیا میں بھی غالب بے انتہا مقبول ہے۔ جتنے غالب ہندوستان میں مقبول ہے اتنے ہی زیادہ باہر کی دنیا میں بھی مختلف زبان اور مختلف تہذیب اور مختلف کلچر کے لوگوں میں بھی غالب مقبول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غالب کے کلام کا تقریباً کئی زبانوں میں، بے شمار زبانوں میں اب تک ترجمہ ہو چکا ہے۔
جہاں غالب کی شاعری میں رومانویت کا پہلو ملتا ہے، وہیں غالب کی شاعری کا ایک اہم جزو تصوف بھی ہے۔ غالب خود اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر رضا حیدر کا کہنا تھا،
غالب کی شاعری کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں بہت ساری جہتیں ان کی شاعری میں نظر آتی ہیں، اس میں ایک تصوف بھی ہے۔ تصوف کو سمجھنا ہر دور میں ایک مشکل ترین امر رہا ہے۔ آج بھی تصوف کی ڈیفینیشن، تصوف کی تعریف مختلف طریقوں سے لوگ کر رہے ہیں، اور سریت، وجودیت اور تصوف کی تلاش ہر دور کی اچھی شاعری میں کی جا سکتی ہے، और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, चूंकि मैंने भी तसव्वुफ़ के ऊपर कुछ काम किया है, तो एक बड़ा शायर जो है और उसकी शायरी में तसव्वुफ़ हमेशा मौजूद रहता है। आप अल्लामा इकबाल की शायरी को देखिए, आप फैज़ अहमद फैज़ की शायरी को देखिए, यहाँ तक कि आप जदीद शोरा की भी शायरी का आप मुताला करेंगे तो आपको तसव्वुफ़ नज़र आएगा। गालिब की शायरी, गालिब जैसा कि खुद कहते हैं कि ये मसाइल तसव्वुफ़, ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो न बादा खार होता। इसका मतलब है कि देखिए, गालिब का जो तसव्वुफ़ का नज़रिया है, गालिब के जो मुतसव्विफाना अफकार हैं, वो रिवायत से हट करके हैं। गालिब अपनी शायरी में इंसान दोस्ती, अख़ुव्वत, भाईचारगी और मोहब्बत का जो तसव्वुर पेश करते हैं, जो कि मुतसव्विफाना तसव्वुर का एक जुज़ है, उसका इजहार गालिब की शायरी में आप हर जगह देख सकते हैं। खुदा से भी कलाम करते हैं, वो कहते हैं, न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता, हुआ जब गम से यूं बेहिस तो गम क्या सर के कटने का, न होता गर जुदा तन से तो जानू पर धरा होता, हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है वो हर एक बात पर कहना कि यूं होता तो क्या होता। तो गालिब की जो शायरी में जो तसव्वुफ के अनासिर हैं, वो एक सवालिया निशान कायम करते हैं। गालिब को आमतौर पे कुछ हमारे अदीब और क्रिटिक कहते हैं कि गालिब खुदा से जो सवाल कायम करते हैं, वो उसमें वो कभी कभी इर्तिदाद की मंजिल तक पहुंच जाते हैं, यानी वो मुर्तिद हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा हम कतई नहीं सोच सकते। अगर हम ऐसा सोचेंगे तो फिर हम अल्लामा इकबाल के बारे में भी यही सवाल कायम कर सकते हैं। गालिब यकीनन अल्लाह से सवाल करते हैं, लेकिन उनके उस सवाल में जवाब भी पोशीदा होता है, और उसी जवाब को जब हम तलाश करेंगे तो हमें गालिब के मुतसव्विफाना अफकार, गालिब की सिरियत, वजूदियत और तसव्वुफाना फिक्र की अहमियत का हमें अंदाज़ा हो जाएगा।
जहाँ गालिब की शायरी उर्दू ज़बान में एक अहम मकाम रखती है, वहीं गालिब के खतूत भी अपना एक अलग मकाम रखते हैं। गालिब ख़त को आधी मुलाकात कहा करते थे और अक्सर उनके ख़त बेतकल्लुफाना होते थे। गालिब ने अपने खतूत में किन मौजूआत पर बात की है, डॉक्टर रज़ा हैदर इसके बारे में क्या कहते हैं?
यह हकीकत है कि गालिब एक कादरुल कलाम शायर हैं, लेकिन गालिब की शायरी के साथ साथ अगर आप उनके खतूत को देखें, उनके खतूत का मुताला करें, तो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि उनके खतूत भी हमारी अदबी तारीख में एक दस्तावेज़ की हैसियत रखते हैं। दस्तावेज़ की हैसियत इस सेंस में रखते हैं, इन मानों में रखते हैं कि गालिब के खतूत का जब हम मुताला करते हैं तो हमें इस बात का अंदाज़ा होता है कि गालिब के खतूत में अदब भी है, समाज भी है, सियासत भी है, और वो तमाम पहलू है जिसकी ज़रूरत उस वक्त में हमें दिखाई देती है। गालिब के हज़ारों से ज़्यादा खतूत हैं, और वो तमाम खतूत उनके दोस्त अहबाब और उनके चाहने वालों के ताल्लुक से हैं जो उन्होंने लिखे थे। गालिब के खतूत को तारीखी नुक्ते नज़र से भी देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गालिब ने अपने अक्सर व बेशतर खतूत में उस वक्त की तारीख को भी बहुत खूबसूरती के साथ पेश किया। 1857 के हालात हमारी तारीख के एक बहुत ही अहम तरीन हालात में से एक हैं। गालिब ने 1857 के तमाम वाक़यात को अपनी तारीख में जिस खूबसूरती के साथ बयान किया है, तो आज भी मौर्रखीन जब 1857 और दिल्ली की अदबी और तहसीबी और तारीखी ज़िंदगी को समझने की कोशिश करते हैं तो गालिब के खतूत का मुतालिया करते हैं। गालिब ने 1857 के वाक़यात को अपनी आँखों से देखा और उन वाक़यात को अपने खतूत में अपने दोस्तों को जिस तरह से लिखा है, उससे दिल तड़प जाता है। दिल्ली की तबाही, दिल्ली की बर्बादी, लाल किले के मुशायरे की तबाही, दिल्ली की सकाफत की तबाही, दिल्ली के कल्चर की तबाही को अपने खतूत में जिस तरह से गालिब ने बयान किया है, उसका भी मुतालिया बेहद ज़रूरी है। तो तो गालिब की शायरी के साथ साथ गालिब के खतूत भी बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। और मुझे इस बात का यकीन है कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा वैसे वैसे गालिब के खतूत की अदबी अहमियत मज़ीद बढ़ती जाएगी और गालिब के खतूत का मुतालिया भी बढ़ जाएगा। आज अगर गालिब अपनी शायरी की वजह से पूरी पूरी दुनिया में जाने और पहचाने जाते हैं, तो अपने खतूत की वजह से भी उनकी शनासाई का दायरा वसी से वसी तर होता जाएगा।
डॉक्टर रज़ा हैदर ने गालिब और एहदे गालिब के नाम से एक किताब भी तसनीफ की है। गालिब के बहुत से अदवार में एक दौर गालिब की दरबार से वाबस्तगी भी थी। आखिरी मुग़ल फरमारवा बहादुर शाह जफर के दरबार में रवायात में ये आता है कि गालिब और बहादुर शाह जफर के उस्ताद इब्राहिम ज़ौक के दरमियान कभी चपकलिश और कभी रंजिश जैसी बातें अक्सर होती थीं। डॉक्टर रज़ा हैदर का इस बारे में क्या कहना है?
गालिब की शायरी को समझने के लिए हमें उस अहद को भी समझने की बेइंतहा ज़रूरत है कि जिस अहद में गालिब शायरी कर रहे थे। ज़फ़र की जो ज़िंदगी थी वो सिर्फ लाल किले में महदूद होकर के रह गई थी। तो ऐसे हालात में गालिब जब शायरी कर रहे हैं तो गालिब का दरबार से वाबस्ता होना लाजमी था। लेकिन उसके साथ साथ दरबार में और भी शोरा वाबस्ता थे, बहादुर शाह जफर से जुड़े हुए थे, बहादुर शाह जफर उनकी सरपरस्ती करते थे। लेकिन इसका कतई ये मतलब ये नहीं था कि वो गालिब की सरपरस्ती नहीं करते थे। गालिब को बेइंतहा चाहते थे और लाल किले का जब भी कोई मुशायरा होता था उसमें गालिब ज़रूर आते थे। लेकिन बहादुर शाह जफर के जो ऑफिशियल उस्ताद थे वो ज़ौक थे। ज़ौक उस्ताद तो ज़रूर थे लेकिन आम तौर पर ये सुनने में मिलता है, कहीं कहीं हम देखते भी हैं, हालांकि ये रिवायत और ये तहरीर मुझे बहुत ही ज़यीफ़ सी दिखाई देती है, कि गालिब और ज़ौक में कुछ चश्मकें होती थी, दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे। ये सोचना बिल्कुल गलत है। गालिब ज़ौक का एहतराम करते थे, ज़ौक भी गालिब का एहतराम करते थे। ये बिल्कुल उसी तरह से बातें होती हैं जैसे अनीस व दबीर की शायरी का जब हम मुतालिया करते हैं और उस अहद को देखते हैं तो ये कहा जाता है कि अनीस व दबीर जो थे वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। ये भी बिल्कुल गलत है। और एक बड़ा गिरोह पैदा हो गया था, कुछ लोग अनीसिये कहलाते थे, कुछ लोग दबीरिये कहलाते थे। यही माहौल गालिब के अहद में भी था। कुछ लोग उस्ताद ज़ौक को पसंद करते थे और कुछ लोग गालिब को पसंद करते थे। गालिब को पसंद करने वालों की तादाद ज़्यादा थी लेकिन इनके जो आपस के ताल्लुकात थे वो बहुत अच्छे थे, दोनों एक दूसरे का एहतराम करते थे। लिहाजा हम इन मानों में कतई इस बात को ना लें कि दोनों में आपस की कोई अदावत थी, ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। नहीं, चूंकि वो हालात ऐसे थे कि उन हालात में दरबार से वाबस्ता होना लोग अपने लिए बड़ी इज्जत समझते थे। अंग्रेज़ों का तसल्लुत बढ़ता जा रहा था, हिंदुस्तान की इक्तसादियात बिल्कुल ख़त्म हो रही थी। ऐसे माहौल में गालिब दरबार से वाबस्ता थे, ज़ौक भी दरबार से वाबस्ता थे और कुछ वजीफ़े भी इन दोनों को मिला करते थे। चूंकि गालिब की जो ज़रूरतें थीं वो ज़रा ज़्यादा थीं, वो दरबार से ज़्यादा चाहते थे, दरबार ने उन्हें दिया भी, उन्हें दौलत भी दी और उन्हें अलकाब से भी नवाजा गया। बहादुर शाह जफर ने उनको उन्हें अलकाब से भी नवाजा। तो ये कहना कि गालिब की दरबार से वाबस्तगी कम थी ये बिल्कुल गलत है। गालिब की भरपूर तरीके से दरबार से वाबस्तगी थी और गालिब लाल किले के मुशायरे में जाया करते थे। हाँ, ये बात सही है कि उन मुशायरों में ज़ौक को अहमियत ज़्यादा मिलती थी गालिब के मुकाबले में, लेकिन उसके बावजूद गालिब ने दरबार से अपनी जो वाबस्तगी का दायरा है उसमें कभी भी कमी नहीं आने दी और बहादुर शाह जफर की इज्जत करते थे, उस्ताद ज़ौक की इज्जत करते थे। सिर्फ इज्जत ज़ौक ही की नहीं करते थे बल्कि उस दौर में गालिब के जो कंटेम्प्रेरीज थे, जो मुआसरीन थे जिनकी बड़ी तादाद थी, गालिब सबकी इज्जत करते थे। तो गालिब को इस तनाजुर में भी हमें देखने की ज़रूरत है कि गालिब जिस माहौल में शायरी कर रहे थे वो माहौल क्या था।
हम कहाँ के दाना थे, किस हुनर में यक्ता थे, बेसबब हुआ गालिब दुश्मन आसमां अपना। ये थी आज की पॉडकास्ट। आप सुन रहे हैं SBS उर्दू और मैं हूँ अफनान मलिक।
इस तरह की और कहानियाँ सुनना चाहते हैं? एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट या स्पॉटिफाई या जहाँ से भी आप पॉडकास्ट सुन सकें।